नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अमिता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किए अपने विचार। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, यह वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान हर क्षेत्र में देश के लिए रहा महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौ सैनिक पनडुब्बी पर की ऐतिहासिक यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की नई दिल्ली में की अध्यक्षता। भारतीय चिकित्सा संघ IMA का चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा योगदान, गृहमंत्री अमित शाह। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित शीर्ष नेताओं ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान से लेकर विश्व के सबसे बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले कई क्षण दिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस वर्ष हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने स्पष्ट रूप से देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। श्री मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोगों के उत्साह और जोश की प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के लिए भी वर्ष 2025 स्मरणीय रहा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियन ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता। श्री मोदी ने कहा कि दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर भारत की बेटियों ने इतिहास रचा। उन्होंने कहा कि एशिया कप T20 क्रिकेट में भी तिरंगा गौरव से लहराया। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतने वाले पैरा एथलीटों की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। श्री मोदी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। प्रधानमंत्री ने भारत में चीतों की संख्या 30 अधिक होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा इस वर्ष आस्था, संस्कृति और भारत की अनूठी विरासत का संगम देखने को मिला। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष के आरंभ में प्रयागराज महाकुंभ ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया और वर्ष के अंत में अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। अगले वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन युवा नेता संवाद भी आयोजित होगा और वे स्वयं इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मोइरांग थम सेठ की चर्चा की, जिन्होंने बिजली की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सोलर पैनल लगाने का अभियान शुरू किया। इस अभियान के फलस्वरूप आज उनके इलाके के सैकड़ों घरों के साथ साथ मणिपुर के कई स्वास्थ्य केंद्रों को भी सौर ऊर्जा मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस प्रयास से मणिपुर की महिलाओं, स्थानीय मछुआरों और कलाकारों को भी लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने फिजी में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रसार के लिए की जा रही एक पहल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिल विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और तमिल साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है। उन्होंने बच्चों और युवाओं में तमिल भाषा के लिए नई रुचि देकर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने एंटीबायोटिक दवाओं के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की एक रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि निमोनिया और मूत्र मार्ग संक्रमण जैसे कई बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाएं निष्प्रभावी हो रही है। इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग चिकित्सक के परामर्श से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कच्छ रण महोत्सव के बारे में भी बात की। 23 नवंबर को शुरू हुआ यह उत्सव 20 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इसमें कच्छ की लोक संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कच्छ के रण की भव्यता को निहारना एक सुखद अनुभव है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने देश विदेश से 2 लाख से अधिक लोगों ने इस महोत्सव में भागीदारी की है। अंत में प्रधानमंत्री ने सभी से स्वस्थ रहने और फिट इंडिया अभियान में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि शीतकाल व्यायाम के लिए उपयुक्त होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारतीय नौसेना की स्वदेशी रूप से निर्मित कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वाक शीर पर सवार हुए। भारत की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर पहुंची थी। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा भारतीय नौसेना की क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के रक्षा निर्माण कार्यक्रम का सशक्त प्रतीक मानी जा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने नौसेना प्रमुख समेत अधिकारियों के साथ पनडुब्बी पर यात्रा कर परिचालन क्षमता और हथियार प्रणालियों की जानकारी प्राप्त की। इस विशेष अभियान में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी मौजूद रहे। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कलवरी क्लास की पनडुब्बी पर यह पहला दौर था। भारतीय इतिहास में ऐसा करने वाली वो दूसरी राष्ट्रपति है। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ APJ अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी पर सोर्टी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की नई दिल्ली में अध्यक्षता की। तीन दिन का यह सम्मेलन 26 दिसंबर को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर लगातार संवाद के जरिए केंद्र राज्य भागीदारी को मजबूत करना है। यह सम्मेलन सहयोगपूर्ण संवाद की प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप यह और एक ऐसा मंच है जहां केंद्र और राज्य समावेशी और भविष्य के अनुरूप आर्थिक वृद्धि के लिए मानव पूंजी की क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग की रूपरेखा तय करते हैं। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोत्तम कार्यशैली को साझा किया जा रहा है। सम्मेलन में चर्चा के पांच महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: बाल शिक्षा, स्कूल शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियां। सम्मेलन में 6 विशेष सत्र रखे गए हैं। इनमें राज्यों का विनियमन, शासन में तकनीक के उपयोग के अवसर और इनसे जुड़े जोखिम, स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला और बाजार संपर्क के लिए एग्रोस्टैक, एक राज्य एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तथा वामपंथी उग्रवाद के बाद की कार्यनीतियां शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान किया है। आज अहमदाबाद में संघ के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देश में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर ने रोगियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हाल ही में हुए बदलाव से उत्पन्न चिंताओं का स्वतः संज्ञान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति JK महेश्वरी और न्यायमूर्ति AG मसीह की अवकाशकालीन पीठ इस मामले पर गौर करेगी। सर्वोच्च न्यायालय का यह हस्तक्षेप अरावली पहाड़ियों की पुनर्परिभाषा को लेकर हुए जनविरोध के बाद आया है। पर्यावरण संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने चेतावनी दी है कि परिभाषा में ढील देने से खनन और निर्माण गतिविधियों का खतरा बढ़ जाएगा। यह विवाद दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में स्थित अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा में लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों से उपजा है, जिसके कारण पहले नियामकीय खामियां पैदा हुई और अवैध खनन को बढ़ावा मिला। इन मुद्दों को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और इस वर्ष नवंबर में एक फैसला सुनाया, जिसमें खनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सीमित की परिचालन परिभाषा को स्वीकार किया गया। फिर से सुने, समिति की परिचालन परिभाषा को स्वीकार किया गया। न्यायालय ने केंद्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अरावली क्षेत्र में किसी भी नई खनन गतिविधि की अनुमति देने से पहले सतत खनन के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अरुण जेटली संविधान और कानून के अद्वितीय विशेषज्ञ और साधारण वक्ता थे। श्री शाह ने कहा कि अरुण जेटली ने एक संवाद के रूप में अमित छाप छोड़ी और कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों तथा पार्टी को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज सुबह नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। इनमें दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद भानसुरी स्वराज और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद शामिल हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने मंजूशोरी में महिला प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। काउंसिल ने इसे पाकिस्तान के संविधान कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन बताया है। काउंसिल के अध्यक्ष राही बुलेदी ने बताया कि महिलाएं शांतिपूर्वक विरोध किए अपने अधिकार का पालन कर रही थी। उनके साथ दुर्व्यवहार से पाकिस्तान की व्यवस्था और न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास कम होता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।